यह संदेश biblicaltraining.org के द्वारा तैयार किया गया है और इसके वक्ता हैं डॉक्टर बिल मॉन्स। अधिक सामग्री के लिए कृपया आप जाएं www.biblicaltraining.org पर। परमेश्वर को सुनना, आरंभिक प्रार्थना। पिता, हम जानते हैं कि यह संसार और शैतान हमको अनावश्यक बातों में इतना व्यस्त और उलझा देना चाहते हैं कि हम तुझे सुनने के लिए न रुक पाए, लेकिन पिता हमारे लिए उन चीजों को करने के लिए वक्त है जिन्हें हम करना चाहते हैं। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही हम तुझे सुनने के विषय में बात करें, हम अपने हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने आप को वो ही करने के लिए समर्पित करेंगे, हम तुझे सुन पाए, यीशु के नाम से, आमीन। जब आप और मैं मसीही विश्वासी बने, हमने एक नए रिश्ते में प्रवेश किया। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी बात है दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, सुनना और कहना। और जैसा कि हम हमेशा कहने से पहले सुनते हैं, मैं आज आप लोगों से परमेश्वर को सुनने के विषय में बताना चाहता हूं। प्रकाशन। मैं चाहता हूं कि हम तीन शब्दों को अच्छे से समझ लें जैसे जैसे हम परमेश्वर से सुनने के विषय में बात करें। पहला है प्रकाशन। प्रकाशन का सीधा सीधा अर्थ है परमेश्वर का अपने आप को हम पर प्रकट करना। प्रकाशन परमेश्वर का हमसे वो कहना है जिसे हम सुन सकें। परमेश्वर का हमसे बात करना और हमारा उसे सुनना दो तरीकों से होता है। सामान्य प्रकाशन। एक तरह से सामान्य प्रकाशन हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध परमेश्वर के विषय में जानकारी है। ये परमेश्वर का सब लोगों से बात करना और सब लोगों का उससे बात सुन पाना है। रोमियो अध्याय 1 में पौलुस लोगों को पाप और उन पापों के लिए उनकी जिम्मेदारी के विषय में कहता है, और इसी संदर्भ में 19वें पद की शुरुआत में पौलुस कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके परमेश्वर तव जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहां तक कि वे निरुतर हैं। पौलुस कहता है कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर सहज और सरल तरीके से बात कर रहा है, और हर कोई जो इस पृथ्वी पर जिया है उनके समय और जगह के बावजूद परमेश्वर की इस खास आवाज को सुनने में सक्षम है। तीन चीजें हैं जो परमेश्वर द्वारा हम पर प्रकट हैं। पहली निर्विवाद यह है कि मैं हूं, दूसरी यह कि उसकी सामर्थ हर किसी पर प्रकट है, और तीसरी यह कि उसकी दैवीयता हर किसी पर प्रकट है। दैवीयता को साधारण तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है कि परमेश्वर उसकी बनाई हुई सृष्टि से अलग है। यह भी कि सृष्टि के पास अपने अस्तित्व की खुद से कोई चाबी नहीं है, परंतु सृष्टि का सृजक सृष्टि से बाहर रहने में सक्षम है। पौलुस कहता है कि सारी सृष्टि में परमेश्वर यह कह रहा है कि सारे लोगों में इस बात की घोषणा कर रहा है, और सब लोग उसकी इस आवाज को सुनने में सक्षम होने चाहिए। इसी विषय के बारे में दाऊद भी भजन संहिता 19 में वर्णन करता है, और ये भजन वाकई में परमेश्वर के प्रकाशन का जश्न है। इसके पहले पद की शुरुआत में दाऊद लिखता है, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को घोषित करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो उसकी कोई बोली है ना कोई भाषा, जहां तक उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं। सारी सृष्टि में परमेश्वर अपने अस्तित्व, अपनी सामर्थ और अपनी दैवीयता के विषय में कह रहा है और घोषणा करता है जो कि उसके अदृश्य गुण हैं। और निश्चित ही जब हम परमेश्वर को सुनने के विषय में सोचते हैं, हमें उसे कैसे सुना जाता है सीखना होगा, और सारी सृष्टि में उसकी आवाज में ध्यान देना होगा। ओरेगन तट पर खड़े होकर कहना कि वह सुंदर है एक अलग बात है, लेकिन हमें यह कहना कि वह सुंदर है क्योंकि एक सुंदर परमेश्वर ने उसे सृजा है। और जब हम सूर्य को उन विशाल समुद्री तटों के ऊपर अस्त होते हुए देखते हैं, हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं, और वो समुद्री तट भी ये ही करते हैं। वो समुद्री तट परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। हम आकाश गंगा की तस्वीर देखते हैं। ये बहुत सी चीजों में से एक मेरी पसंदीदा चीज है जिसे देखना मुझे बहुत पसंद है, और हम उनकी और हमारे बीच की दूरी, उनकी चमक और उनकी सामर्थ को देखते हैं। लेकिन हमें हर चीज के ऊपर सारे जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखने की आवश्यकता है, जिसने उन लाखों आकाश गंगाओं को बनाया है। जब हम फूलों की तस्वीरों को करीब से देखते हैं, हम उनकी पेचीदगी, उनकी मिठास, उनकी सुंदरता को देखते हैं। हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं जो उन फूलों से अलग है और फिर भी उनके द्वारा अपने होने का वर्णन करता है। ये ही हमारा सृष्टि में परमेश्वर से सुनना और उसे सुनकर प्रत्युत्तर देना सीखना है। और यह बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। आप ओरेगन तट पर जितनी देर आप चाहते हैं खड़े हो सकते हैं और फिर भी परमेश्वर को यह कहते हुए कभी नहीं सुन सकते, मेरा बेटा तुम्हारे पापों के कारण सूली चढ़ गया। सामान्य प्रकाशन में हमें सिखाने की यह दक्षता नहीं कि उदार अनुग्रह के द्वारा विश्वास से होता है, इसलिए कि हमें एक और तरह का प्रकाशन चाहिए होता है और उसे हम कहते हैं विशेष प्रकाशन। विशेष प्रकाशन, विशेष प्रकाशन कुछ लोगों को नियत समय में उपलब्ध जानकारी है। विशेष प्रकाशन परमेश्वर का कुछ लोगों से जो उसे सुनने में निपुण है बात करना है। विशेष प्रकाशन एक तकनीकी नाम भी है जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाइबल को बहुत से शब्दों से जाना जाता है, जैसे कि वचन, और यह वही है जिससे हमें ये विशेष प्रकाशन मिलता है। उसके द्वारा ही हम परमेश्वर को सुनते हैं, चाहे अन्य लोग अन्य जगह या समय में उसे सुनने में सक्षम नहीं है। भजन संहिता 19 के कुछ अन्य पदों में दाऊद सृष्टि के विषय में और परमेश्वर की सृजी गई चीजों का वर्णन करता है, और 7 पद में वो विशेष प्रकाशन पर आता है और कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था बाइबल उसका दूसरा नाम है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले शते से भी बढ़कर मीठे हैं, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बहुत प्रतिफल मिलता है। भजन संहिता 19 इस बात का जिक्र करती है कि परमेश्वर ने हमसे बात करना चुना है ताकि हम उसे सुन सकें। हम उसके अस्तित्व, उसकी सामर्थ्य और उसकी दैवीयता के विषय में सृष्टि के द्वारा सुन सकते हैं, लेकिन इससे भी अधिक सीख सकते हैं जब परमेश्वर हमसे विशेष प्रकाशन बाइबल के द्वारा बात करता है। बाइबल, आधे घंटे में मुझे कुछ बातों को उठाना होगा और कुछ बातों को छोड़ना होगा जब मैं बाइबल के विषय में आपके साथ बांटता हूं, और बहुत कुछ है जो इस विषय में कहा जा सकता है, परंतु एक बात है जो मैं कहनी चाहता था और जो इस समय तक थोड़ी निराशाजनक रही है, और वह है कि हम बाइबल का कैसे हवाला देते हैं, हम इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं और इसके कैसे छोटे टुकड़ों में हवाले देते हैं। बाइबल बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में बंटी हुई है और हम इसे पुराने नियम और नए नियम में बांट देते हैं। हर एक नियम पुस्तकों में बटा हुआ है, और पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप कभी अपनी बाइबल को खोलें, और यदि आप इसके साथ परिचित और इसे विशेष सूची को देखें और बाइबल के नाम जान सको। इसलिए यदि मैं आपको कहूं कि 2 तिमोथियस कहूं तो आप सोचेंगे, ओ यह तो बाइबल की एक पुस्तक है, इसलिए नियम पुस्तकों में बांटे हुए हैं और पुस्तकें अध्यायों में बांटी हुई हैं और अध्याय आयतों में बांटे हुए हैं। जिस रीति से हम किसी वचन का हवाला देते हैं वह कहना होता है, जैसे यूहन्ना 3:16 में, इसका अर्थ यह है कि यूहन्ना पुस्तक का नाम है जो कि नए नियम में है, और 3 अध्याय का नाम है और 16 आयत का नाम है। इसलिए मैं आपको बाइबल का हवाला पहले नहीं दे सका, परंतु अब मैं कर सकता हूं। यूहन्ना 3:16 पुस्तक, अध्याय और आयत। आपके पास इसका एक पर्चा भी है और मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप इसे पढ़ें और कुछ समय इसके साथ बिताएं। यह बाइबल के नाम है जो कि आम श्रेणियों में रखे गए हैं, और यह आपको समझ प्रदान कर देगा कि बाइबल में क्या कहां पर है। तो आपको सिर्फ थोड़ा समय इसमें बिताना चाहिए। 4 महत्वपूर्ण विषय। चार विषय हैं जिनके विषय में बात किए बिना मैं बाइबल का बयान नहीं कर सकता, और फिर से मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके विषय में विस्तार से बता सकूं, परंतु मैं सामने निष्कर्ष में इन चार विषयों के ऊपर बताना चाहूंगा। और यदि यह चार विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप biblicaltraining.org पर जाएं और वहां पर बाइबल की शिक्षा के हिस्से में जाकर देखें। वहां पहले तीन संदेश इन चार बातों पर मेरे विचार दिखाएंगे और मैं जहां निष्कर्ष में बाइबल के विषय में बात करना चाहता हूं। प्रेरणा, हम बाइबल की प्रेरणा के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल प्रेरित है। इसका बुनियादी तौर पर क्या अर्थ है? क्या हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर के मुख से आई है? प्रेरणा एक शिक्षा है जो कि एक स्रोत के साथ संबंधित है। यदि आप दूसरा तिमोथियस 3:16 में जाएं तो आप देख सकते हैं कि पॉलस लिखता है सारा वचन प्रेरित है, और कुछ पुराने अनुवाद कहते हैं सारा वचन परमेश्वर के सांस के द्वारा आया है। वास्तव में पॉलस अपने शब्द को बनाता है, इसलिए शब्द का अनुवाद करना कठिन है। वह परमेश्वर के लिए शब्द लेता है और वह सांस लेना शब्द लेता, और आप यूनानी भाषा में ऐसा कर सकते हैं, वह उन्हें इकट्ठे जोड़ता है और आप देख लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। परंतु सारा वचन परमेश्वर के द्वारा सांस लिया गया है। सारा वचन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला है। एक दूसरी पुस्तक दूसरा पत्रस 1:20 में शुरू करके पत्रस वचन के विषय में कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यह है शुरुआत, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जब हम बाइबल की प्रेरणा के विषय में बात करते हैं, हम यह विश्वास करते हैं कि अलग अलग लोगों ने बैठकर इन शब्दों को लिखा, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें लिखने के लिए उबारा। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा ने जो वह लिख रहे थे उसे नियंत्रित किया, और उन्होंने वह शब्द लिखे जो परमेश्वर के शब्द है, और यह है प्रेरणा की शिक्षा, अधिकार। दूसरी बात जो इस अध्याय में बताया गया है वह अधिकार का मुद्दा है। हम वचन के अधिकार पर विश्वास करते हैं। यदि आप दूसरा तिमोथियस 3:16 को पढ़ें तो यह कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और जो पॉलिस तिमोथियस को कह रहा है कि यदि तुम वचन के स्रोत को जानते हो, और वह है कि यह परमेश्वर के मुख से निकलता है, इसलिए यह उसके अधिकार के साथ आता है। इसलिए जब आप किसी को और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देते हैं तो आप मनुष्यों के शब्दों या बुद्धि से किसी को नहीं बताते हैं, आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रेरणा की शिक्षा यह है कि वचन परमेश्वर से आया, और क्योंकि परमेश्वर से आया है इस पर परमेश्वर का अधिकार है। मैं इस पुस्तक से इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि यह यादुमयी है, इस पुस्तक में कुछ निहित नहीं है। मैं इस पुस्तक से प्रचार करता हूं क्योंकि हम पुस्तक पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यह वचन परमेश्वर की ओर से आए हैं, और यह वचन अधिकार के साथ आए हैं। इसलिए मेरा काम है कि जो मुझे परमेश्वर ने कहा है उसका मैं प्रचार करूं, ना कि जो मैं सोचता हूं उसका प्रचार करूं। इसलिए प्रेरणा और अधिकार की शिक्षा बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कृपया इस बात को समझें कि बाइबल किसी के साथ भी अधिकार को नहीं बांटती है। यह पुस्तक कुरान से प्रतियोगिता में नहीं है। यह पुस्तक जोसेफ स्मिथ की लिखत के साथ प्रतियोगिता में नहीं है। यह पुस्तक मनुष्य की फिलॉसफी के साथ प्रतियोगिता में नहीं है। यह पुस्तक कलीसिया के रीति रिवाजों, पोप के घोषणा पत्र और पादरी पुरोहितों के साथ प्रतियोगिता में नहीं है। यह पुस्तक अधिकार के लिए किसी के साथ भी प्रतियोगिता नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर किसी से प्रतियोगिता नहीं करता है। वचन और सिर्फ वचन ही अधिकार का स्रोत है, और हमारी सच्चाई का स्रोत है, और हमारी अगुवाई का स्रोत है, और यह है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। इसलिए नहीं कि यह जादुमयी है या हम इसे किसी विशेष रंग से खरीद सकते हैं और इसके पन्नों के ऊपर रंग डाल सकते हैं और हम इसकी ओर जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर के मुख से निकला है। कैनन सिटी, तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह है कैनन सिटी का मुद्दा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है और बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारे संदेश हैं जिनको आप सुन सकते हैं। यदि आप इसके विषय में और सीखना चाहते हैं, यह साधारण रीति से एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वह है कैनन सिटी का मुद्दा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है और बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारे संदेश हैं जिनको आप सुन सकते हैं। यदि आप इसके विषय में और सीखना चाहते हैं और यह साधारण रीति से एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसिया के द्वारा सहायता की है कि वह जान सके कि कौन सी पुस्तक सच से प्रभावित है। 66 से ज्यादा पुस्तकें थी जो लिखी गई और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि उसने प्राचीन कलीसिया की अगुवाई की कि यह 66 पुस्तकें परमेश्वर से हैं और शेष जिन्हें संसार आज पकड़ कर दिखाता है और कहता है तुम्हें थोमा का सुसमाचार पढ़ना चाहिए, हम विश्वास करते हैं कि वह गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को नियंत्रित किया जब वह कैनन बना रहे थे। एक और बात, यदि कोई कहे कि थोमा का सुसमाचार बाइबल में होना चाहिए तो उनसे पूछें क्या उन्होंने इसे पढ़ा है, क्योंकि आपको एक ही काम करने की आवश्यकता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि यह बाइबल में होना चाहिए या नहीं। यह बाइबल की तरह नहीं है, यह 180 ईस्वी में लिखी गई थी, इसलिए थोमा ने इसे नहीं लिखा जब तक वह बहुत ही बूढ़ा ना हो, जहां वो था ही नहीं। विश्वास योग्य संदेश, चौथी बात जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूं कि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल विश्वास योग्य है क्योंकि यह परमेश्वर से आई है। इस पर ना सिर्फ हमारी निष्ठा है परंतु हम यह भी विश्वास करते हैं कि लेखकों ने इसे सही रीति से लिखा है। जब वह कहते हैं कि यीशु ने यह कहा या यीशु ने यह बोला, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में फिर से जैसे यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें वह बातें स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुम्हें कही हैं, हम विश्वास करते हैं कि वास्तव में ऐसे ही हुआ है। इसलिए यह एक विश्वास योग्य गवाह है जो यीशु ने सुसमाचार में सिखाया और यह एक विश्वास योग्य गवाह है जो प्राचीन कलीसिया की उन्नति के विषय में बताता है और प्रेरितों ने क्या शिक्षा दी है। फिर से मैं जानता हूं कि कुछ झुंड यह कहते हैं मैं बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकता, यह विश्वास योग्य नहीं है। इसमें कई विरोधाभास हैं। एक काम है जो मुझे करने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, परंतु यह एक अच्छी बात है कि हम सभी पापी हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं। मैं अपने चेहरे पर जय भयंकर रूप ले आता हूं और कहता हूं अच्छा नहीं सच में यह गलतियों से भरी हुई है, मुझे एक दिखाएं। नहीं, यह गलतियों से भरी हुई है, मेरा अर्थ है कि वह हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि वह गलतियों से भरी हुई है तो फिर आप बहुत ही आराम से एक गलती तो मेरे सामने निकाल कर दे सकते हैं। वह नहीं जानते कि समस्या कहां है, वह वैसे ही विश्वास नहीं करना चाहते। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल विश्वास योग्य है और यह अपने आप का विरोध नहीं करती है। इसलिए मैं इन चार बातों के विषय में बात करने के सिवाय बात नहीं कर सकता हूं। वचन की प्रेरणा वह अधिकार जो परमेश्वर के वचन से आता है, यह वास्तविकता के प्राचीन कलीसिया ने परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से 66 पुस्तकें प्राप्त की और यह पूरी तरह से विश्वास योग्य है। जब पुराने नियम का नबी कहता है प्रभु यह कहता है और जो शब्द मुख से बाहर निकले, जो शब्द लिखे गए, वह परमेश्वर के शब्द हैं। आप बाइबल के साथ क्या करते हैं? इस सुबह मैं इस सवाल पर जोर दे रहा हूं कि आप इस पूरे सवाल के साथ क्या करेंगे, आप इस पुस्तक के साथ क्या करेंगे। यह अच्छा है इसके विषय में वार्तालाप करना। प्रेरणा और अधिकार और सच्चाई, हम में से कुछ लोग इन विषयों पर वार्तालाप करना पसंद करते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि यह सब यहां के लिए है, संभवत इसका उत्तर है नहीं। इसलिए प्रश्न यह है तो हम इस पुस्तक के साथ क्या करते हैं। आप इसके साथ चार अलग अलग बातों के लिए आपको प्रोत्साहित करने दें, पढ़ें। हम में से कुछ पढ़ना पसंद करते हैं क्या नहीं, और हम सभी तरह की चीजों के विषय में पढ़ना पसंद करते हैं। हम बाइबल के विषय में पढ़ना पसंद करते हैं, हम बाइबल के लोगों की समझ के विषय में पढ़ना पसंद करते हैं, हम आत्म कथाओं के विषय में पढ़ना पसंद करते हैं कि कैसे बाइबल ने उन लोगों के जीवनों को प्रभावित किया, परंतु हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ना पसंद करते हैं। यह बहुत आसान पड़ी हुई चीजों को पकड़ना, परंतु क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? मुझे आपको इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने दें कि किन्हीं तीन कारणों के लिए। पहला, एक अच्छे रिश्ते के लिए वार्तालाप आवश्यक है, जे उन वाक्यों में से एक नहीं परंतु यह वाक्य वास्तव में सही है। एक अच्छे रिश्ते के लिए वार्तालाप जरूरी है, और यदि हम अपने उदारकर्ता के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें उसके साथ वार्तालाप करना जरूरी है। जो उसने लिखा है उसे पढ़ने के द्वारा हम आशिंक रूप से उससे सुनते हैं। यह एक अच्छे रिश्ते और संबंध के लिए यह एक अच्छी सोच है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने उदारकर्ता को लगातार सुनते रहें। प्रत्येक सुबह का पहला चरण मेरा पसंदीदा समय है। मेरी पत्नी रॉबिन और मैं कुछ वर्षों के कठिन परिस्थितियों के बाद हमने यह नियम बनाया कि हम सुबह जल्दी उठें। तब तक बच्चे नहीं जागते और कोई आवाज नहीं होती, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, तब एकांत और शांति होती है, और चार कप कॉफी के बाद हम बात करने के लिए तैयार होते हैं। तब हमारे पास आधा घंटा परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत करने के लिए होता है। यह एक अच्छा समय होता है, और हम कहते हैं, आप कैसे सोए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, अच्छा वार्तालाप, परमेश्वर आपको क्या सिखा रहा है, कल रात आपने क्या पढ़ा जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आया, शायद आप इस सुबह क्या विचार कर रहे हैं। देखें, यह घनिष्ठ वार्तालाप है, क्या यह नहीं है? यह हर बार हर सुबह लगातार होना चाहिए। वही बात तो हमारी शादी में भी सत्य है, और वही सत्य हमारे परमेश्वर के साथ शादी, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। ठीक, आदमी और औरत एक जैसे हैं, हम मसीह की दुल्हन है, हमें उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए। यदि हमें उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, और आपने यह वाक्य सुना होगा एकांत समय, और यही एकांत समय के विषय में, तो मुझे और आपको लगातार इस एकांत जगह को ढूंढने और एकांत समय को निकालने की आवश्यकता है, और इसे करते रहें जहां एकांत है, जहां शांति है, और हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। स्वस्थ संबंध स्वस्थ रिश्तों के लिए अच्छी वार्तालाप होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें समय निकालना चाहिए। दूसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, कि यदि हम वचन को नहीं पढ़ते तो हम कैसे जानेंगे कि वास्तव में क्या सर्वोत्तम है, यदि हम वचन को नहीं पढ़ते तो हम कैसे जानेंगे कि क्या सत्य है। यदि आप वचन में नहीं है तो जैसे यह कहावत है, यदि तुम चीजों के विषय में नहीं पढ़ते हो तो तुम कैसे जान पाओगे कि प्रतिदिन करने के लिए क्या उत्तम है। भयानक व्याकरण, परंतु आपको विचार मिलता है कौन सी बात महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए परमेश्वर की कौन सी महान आज्ञा है। चर्च में जाना नहीं, यह नहीं कहता, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे हृदय मन और प्राण से प्रेम करो। यदि आप और कुछ नहीं करते परंतु आप यह करते हैं, तब आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। परंतु आप यह नहीं जान पाओगे कि अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे, तुम यह नहीं जान पाओगे कि आप नकल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, मसीही लोग ब्रह्मांड के नकलची हैं, क्योंकि चेले अपने आप को दोहराते हैं। और आप नहीं जान पाओगे यदि आप वचन को नहीं पढ़ते कि परमेश्वर के महान आदेश क्या है। यीशु ने कहा, जाओ और चेले बनाओ। इसलिए हम जहां पर हैं कि हम चेले बनाएं, उन्हें बपतिस्मा दें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम में से प्रत्येक को सुसमाचार के कार्य में संलग्न होना चाहिए किसी न किसी तरह से, और हम सबको संलग्न होना चाहिए कि हम पूरी तरह से समर्पित चेले बनाने चाहिए। उन्हें वह सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, यीशु ने कहा। यह वह बातें हैं जो कि तुम नहीं जानते, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानोगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, यदि आप जानते क्या सही है क्या अच्छा है, परमेश्वर आपको संभाले हुए है, और वह कह रहा है यही सर्वोत्तम है, यही अच्छा है, यही तुम इसे नहीं जानते तो ना तुम वचन पढ़ते और ना ही उसे सुनते। ठीक है, मैं भी यह जिक्र करना चाहता हूं, वास्तव में आपको पवित्र आत्मा से सहायता लेनी चाहिए कि वह आपको इसे समझने की समझ दे। जैसे आप इसे पढ़ते हैं, वह आपका एक अच्छा शिक्षक है, वह आपके प्रचारक से भी श्रेष्ठ है, वह आपके संडे स्कूल के शिक्षक से भी श्रेष्ठ है, वह उन सभी पुस्तकों से भी श्रेष्ठ है जो आप बाइबल के विषय में पढ़ना चाहते हैं। परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारा श्रेष्ठ शिक्षक है। पौलुस ने क्रंथियस की कलीसिया को कहता है कि संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया। मसीह के आने से पहले शैतान ने आपकी आंखों को अंधा किया था, और वह अंधापन चला गया है। परंतु अब आपके पास एक मार्ग है, मेरे पास एक मार्ग है जाने के लिए, और हम उस रास्ते पर चलकर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर को जानते हैं, जो पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं। दूसरा करंथियों के दूसरे अध्याय की 12 आयत की शुरुआत में पौलुस कहता है, हमने इस संसार के आत्मा को नहीं पाया है, परंतु परमेश्वर के आत्मा को पाया है, ताकि हम उन बातों को समझ सकें जो उसने हमें मुफ्त में दी हैं। और हम इन बातों को शब्दों में कहते हैं कि किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाने से। आत्मिक सच का अनुवाद आत्मिक लोग ही करते हैं। आइए एक नियम बनाएं कि इस पुस्तक के लोग होने के लिए या गेरा नहीं जिसमें हम छलांग लगाएं, या कोई रीति रिवाज नहीं जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह को हम प्राप्त करें, यह इनमें से कुछ नहीं है। यह एक सोच है। हम एक नए रिश्ते में प्रवेश कर चुके हैं, और यदि हम अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमें वार्तालाप करना चाहिए। सुनना वार्तालाप का हिस्सा है, और हम पढ़ने से सुनते हैं, इसके ऊपर मनन करना। दूसरा, मैं आपको बाइबल पर मनन करने के लिए उत्साहित करूंगा। हां, कई ऐसी सुबहें हैं जब मैं रॉबिन के साथ बात कर और वह मुझे कुछ चीजों के बारे में बताती है और वह क्लिक नहीं करती है। वे मेरे लिए अर्थहीन होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, परंतु अक्सर ही वह सही होती है और मैं गलत। इसलिए जब चीजें समझ में नहीं आती अक्सर मेरा दोष होता है। कई बार मुझे जरूरत है कि मैं बातों के विषय में सोचूं। उसे मुर्दा लोगों के बारे में पढ़ने का शौक है, और यह एक अच्छी सामग्री पढ़ने का अच्छा तरीका है। वे अक्सर मुझे ऐसी परिभाषाएं देती हैं जो उनके विषय में बात करती थी जो कि 1850 की चर्च में होती थी। कुछ पल के लिए यह मुझे उन विषयों में सोचने के लिए बाध्य करती है, परंतु मैं अपने संबंधों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूं। मैं उसके वचनों पर मनन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं इसके बारे में सोचने और मनन करने के लिए समर्पित हूं। चाहे यह मुझे पहली बार में समझ ना आए, मैं उसे संदेह का फायदा देने के लिए समर्पित हूं। मनन करना क्या है? अब आप में से कुछ लोग अपने लाल झंडे ऊपर करेंगे जब मैं मनन के विषय में कहूंगा, और आप में से कुछ पूर्वी धर्म के मनन की रीति के विषय में सोच रहे होंगे। यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिस प्रकार के मनन की प्रक्रिया पूर्वी धर्म से आती है वह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वह सिखाते हैं कि अपने मन को खोलो, कि अगर आप किसी शैतानवादी से पूछें तो वह आपको बताएगा कि शैतान इस बात से अधिक किसी और बात को पसंद नहीं करता कि मसीही बच्चे अपना मन खोलें और अपने वचनों पर मनन करें, क्योंकि शैतान सीधा खालीपन की ओर जाएगा। मसीही मनन इसके बिल्कुल विपरीत है। जह आपके मन को परमेश्वर के वचनों से भरना है, जह आपके मन को उन बातों के साथ भरना है जो कि वचन में लिखी हुई हैं, और इसी पर सोचना और विचार करना और संदेह को फायदा देना, क्योंकि आपको पता ही है कि अंत में यही सही है। इसलिए आप इस कार्य को करें, आप इसे सुने, आप इस विषय पर विचार करें तथा मनन करें, और इस पर कार्य लगता है, परंतु आपका प्रयास निष्फल नहीं होगा। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के प्रयासों के विषय में सोचें। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो, जहां कोई कार्य अथवा कॉफी पी रहे हो, लंच कर रहे हो, जहां आपके सामने पड़ा कंप्यूटर धुंधला नजर आ रहा हो, तो आपको 10 मिनट का विश्राम लेना चाहिए। रुकें और मनन करें, रुकें और अपने मन को उन शब्दों से भरें जिन वचनों को आपने पढ़ा था। उस आयत को दोबारा दोहराएं जिस पर आपने मनन किया था, और परमेश्वर से कहें कि वह आपको इसकी समझ दे कि आप इसको समझ सकें और अपने जीवन में इसे लागू कर सकें। यदि आप यह कहते हैं कि आप वचन के वायदों को जानते हैं, यह वायदा करता है कि आप आशीषित होंगे। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मुझे परमेश्वर से आशीष पाना पसंद है। भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। और धन्य व्यक्ति ऐसा होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन के ऊपर वह मनन करता रात दिन, यह परमेश्वर की आशीष है। और आप और मैं उस वृक्ष के समान है जो जीवन की बहती नदी के किनारे लगा होता है, जो उससे बहती है और उसके पवित्र वचन के द्वारा बहती है। जैसे हम उस नदी के झरनों के पोषण पाते हैं, धर्मी ओ के वृक्ष की नाई फलता और फूलता है, परंतु आप यह केवल पढ़ने के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु इस पर मनन करने और इसे अभ्यास में लेने के द्वारा यह होता है। इसे याद करें। तीसरी, मुझे आपको याद करने के लिए उत्साहित करने दें। अरे, मैं तो 50 शताब्दी की कविताएं याद नहीं कर सकता। कृपया मुझे आपको उत्साहित करने दें, जैसे मैंने अपने आप को उत्साहित किया था कि वचन को याद करने के लिए। लेकिन यह प्रयास द्वारा निश्चित है कि परमेश्वर का सच्चा वचन आपकी जीभ पर रहे। यही तो निश्चित है। जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं कि क्या सही है और हमारे पास अच्छा विचार है कि उन हालातों में हम कैसे व्यवहार करें। भजन संहिता में लिखा है, मैंने अपना मन तुम्हारे वचनों से भरा है ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप ना करूं। हम कैसे जानेंगे कि पाप क्या है? जब हम अपने मन को उसके वचनों से भरेंगे और उस पर मनन करेंगे। इसलिए हमें वचन और उसमें लिखी आयतों, पदों और अध्यायों को याद करना चाहिए ताकि परीक्षाओं का सामना कर सकें। हाँ, हम यीशु की कहानी को जानते हैं। जब उस पर 3 बार परीक्षा आई थी तो उसने उसका सामना वचन के द्वारा किया था या नहीं? उन्होंने वचन को बोला। परंतु इससे अधिक, जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं और कहते हैं होने दो और वही करते रहो, यह एक तरह से खतरनाक है। परंतु आप परमेश्वर को परख सकते हैं और उसका वायदा आपको सुरक्षित करता है। लेकिन वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, क्योंकि हम याद रखें कि यीशु ने शैतान को क्या उत्तर दिया था। शायद जीवन कठिन है और हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है और यह विचार हमारे मन में चल रहा है, यदि मसीहियत इसी के विषय में है तो मैं इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। यह कोई मजाक नहीं, यह तो बहुत ही कठिन है। और वह आयत आपकी समझ के बाहर है जहां यीशु ने कहा, मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, दिल का दीन हूं और तुम मुझसे आराम पाओगे। मेरा जुआ उठाना कठिन नहीं, सरल है। जब यह वचन हमारे मन में चल रहा होता है तो हम कहते हैं, यदि यीशु ने यह वायदा किया है कि उसका क्रूस उठाना सरल है, तो क्यों हम इस बोझ के तले दबे हुए हैं? और यह आयत हमारी सहायता करती है। पश्चिम सभ्यता में अकेलापन उसकी चरम सीमा पर है और हम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, परंतु अधिकतर यह गलत धारणा है। इसमें कोई गहराई नहीं है, हम इसके लिए भूखे हैं। अमेरिकन अकेलापन इससे थोड़ा अलग है। इसलिए आप जीवन में हों और आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आप अकेले हैं, और यीशु के अंतिम वचन जो उसने अपने चेलों को मती रचित सुसमाचार में कहे, वह हमारे मन में आते हैं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह स्मरण रखने की सुंदरता है। जहां यह आयतें हमारी जीभ पर होती हैं और हमारे मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगे रहते हैं, ताकि जब हम ऐसी परिस्थिति में पढ़ें तो वहां पर उत्तर है, वहां सच है, वहां पर हमारे लिए सहायता है। अक्सर मैंने यह देखा है कि सन्निकट यह कार्य नहीं करता। क्या आपने इसे जांचा है? आप कैसी कठिन परिस्थिति में हैं? आप किसी चीज के विषय में चिंतित हैं? कल रात्रि मैंने एक घटना के विषय में सुना। यह मेरी पुत्री नहीं थी और किसी की पुत्री अलेबेनी में अटक गई थी और एयरलाइन को इसके विषय में कोई चिंता नहीं थी। किसी भी तरह वह जहाज पर नहीं चढ़ सकी। वह चिंतित हो सकती थी और यह आयत हमारे मन में आती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और जय आयत जो पौलुस फिलिपियों को देता है हमारे मन में से गुजरती है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखें, जहां एक बात है जो कि आपकी बेटी अलेबेनी में फंस जाए और आप कहें, ठीक है परमेश्वर, मैं जहां चिंतित हो रही हूं, ठीक है, यह क्या था? ओह, परमेश्वर ने मुझे शांति का वायदा दिया। परंतु शांति के बारे में क्या है? यह ऐसे काम नहीं करता है। क्या यह करता है? परंतु हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रार्थना और विनती के द्वारा हमारी विनतियां परमेश्वर के आगे अर्पित करो। वह शांति जो समझ से परे है आपके हृदय और मन की रक्षा मसीह में करेगी। देखें, यह है याद की शक्ति। और मैं आपको उत्साहित करता हूं, जैसे मैं अपने आप को याद करने के लिए समर्पित कर रहा हूं, इसलिए यह मेरी जीभ के ऊपर है, मेरे मन को यह सींचती है। इसके आज्ञा पालन करें। चौथी बात है कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इसका आज्ञा पालन करें। कई बार हमें यह भावना होती है कि जो कुछ मुझे करना चाहिए कि मैं इसे जान लूं, परंतु मुझे इसका आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं आयतों को बोल सकता हूं जो कहती है कि मैं चिंता ना करूं, परंतु क्या होता है जब चिंता होने की परीक्षा मुझ पर आती है। आए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि ना सिर्फ आप इसे पढ़ें, इस पर मनन करें, इसे याद करें, वरन आप इसका आज्ञा पालन भी करें। क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? जब आप वचन को जानते हैं परंतु आप इसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए एक शब्द है, इसको कहते हैं मूर्ख होना। जो संसार का सबसे प्रसिद्ध संदेश पहाड़ी उपदेश है, उसके अंत में यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जानने से कोई फायदा नहीं है यदि हम इसका आज्ञा पालन नहीं करते और इसे काम में नहीं लाते हैं। आप जानते हैं कि क्या होगा, जैसे आप और मैं इसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसका आज्ञा पालन करते हैं, हम इसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। संसार के पास बहुत से दावे हैं जिन्हें वह सत्य कहते हैं या नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो संसार कहता है कि वह सत्य है और वह वहां है और वचन यहां, और हमें इनमें से चुनना पड़ता है। क्या हम संसार पर विश्वास करेंगे जहां हम परमेश्वर को मानेंगे? यह एक क्रिया है जिसमें से हम सभी गुजरते हैं या नहीं। मैं कुछ समय पहले 60 मिनट देख रहा था और मुझे यह बताया गया कि हर बात तर्क सिद्ध नहीं है, और कोई कहे कि कोई मनुष्य अपनी कामुक लालसा को रोक सकता है, और उस व्यक्ति ने हमें कुत्ते की तरह बताया। आप यह उपेक्षा नहीं कर सकते कि कुत्ता अपने कामुक स्वभाव को नहीं रोक सकता। आप यह बिल्कुल ही कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे जवान लोग ऐसा कर सकते हैं। यह है जो संसार कहता है, और यहां पर वचन एक और सत्य का दावा करता है और वह कहता है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। और आप इसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं मैं किस पर विश्वास करूं। आप इसको देखो और सोचो, किस पर मैं भरोसा करूं? मैं जानता हूं मुझे यह भरोसा करना है, पर जो कुछ मेरे अंदर है वह मुझे बताता है कि उस पर भरोसा करो जो उधर है। और हमें यह चुनाव करना है। कई बार हम संसार को चुनते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि आपको पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। और कई बार जब इसकी हमें समझ नहीं आती है तब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। क्या परमेश्वर कभी गलत थे? उत्तर है नहीं, कभी नहीं। उन परिस्थितियों में मैंने अपने जीवन में देखा है जब मैंने कुछ बातों को वचनों में पढ़ा और मैंने सोचा, आप जानते हैं अगर वो परमेश्वर ना बोलते तो किसी तरह से मैं भरोसा ना करता, क्योंकि यह सब मूर्खता से भरी बात थी। कोई मूर्खता भरी हंसी तुम्हारे मुंह से ना निकले, यह मूर्खता है। पर जैसे हम विश्वास चुनते हैं और जैसे हम आज्ञा को चुनते हैं और हम आज्ञा पालन करना चुनते हैं, हम देखते हैं कि वह हमेशा सच्चा है, वह हमेशा सही है, वह विश्वास बढ़ाता है और जिससे हम आज्ञा पालन करते हैं। और जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं तब हम बदलने लगते हैं, और यह सबसे उत्तम लक्ष्य है इन सब का। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा को कायम रखें और उसके स्वरूप पर बदल जाएं और उसके पुत्र के स्वरूप पर। मैं एक स्तर से दूसरे स्तर तक, जैसे हम आज्ञा पालन करते और जैसे हम अपने आज्ञा पालन के विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हम बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम और ज्यादा यीशु के जैसे हो जाते हैं। इस कलीसिया में यह हम सभी के लिए सच हो और हम इस पुस्तक के लोग बने आए। प्रार्थना करें। पिता, बहुत कुछ है इस पुस्तक में जो कि अजीब है और हम उसे समझ नहीं सकते, और हम यह स्वीकार करते हैं कुछ बातें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं और कुछ बातें हैं जो सहज ज्ञान के उलट हैं। पर पिता, हम विश्वास करते हैं कि यह आपका वचन है जो आपके अधिकार को देखता है, अधिकार जो आप किसी के साथ नहीं बांटते और किसी के साथ भी नहीं। और पिता, हम सच में आपको जानना चाहते हैं और आपके पुत्र के पुनरुत्थान को, हम एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं पिता, हमें सुनना सिखा, हमें सच में बढ़िया सुनने वाले बन जाएं, हम पढ़ने से सुन सकते हैं, हम पर विचार करना, और आपने हमें बता दिया है कि हम क्या सोच सकते हैं, हम उन बातों को याद करने पाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिता हमने अपने आप को इसमें डाल दिया है और इसकी वजह यह करने के लिए मूर्खतापूर्ण बात लगती है, तब भी जब यह आज्ञा पालन हम कर सकते हैं पिता, हमेशा सच होते हैं और शैतान हमेशा झूठा होता है। हम आपके विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और हम महिमा से महिमा में बढ़ते जाएं और हम आपके पुत्र यीशु मसीह जैसे हो जाएं। पिता हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम आपको आमने सामने देखेंगे, आप और हम बात कर सकेंगे और हम वापिस आकर आपके चेहरे के भाव को देख सकेंगे, जब आप हमारी सुनेंगे और हमसे बात करेंगे। उस समय तक हम आपके वचन का आनंद ले सकते हैं, यीशु के नाम से आमीन।